ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
संदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू निखिल जी।
संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर देश को संबोधित किया। चुनाव जीतने के बाद ये उनका पहला संबोधन था। कई सारी बातें उन्होंने कही जिनमें से कुछ बातें नई थी और कुछ ऐसी बातें भी थी जो पहले हो चुकी हैं लेकिन उनको विस्तार दिया गया, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने और आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही हैं, तो इन सारी बातों के क्या मायने हैं हमारे लिए?
देखिए, जैसे आमतौर पर होता है कि 15 अगस्त का जो स्पीच है उसमें प्रधानमंत्री जी अपने जो कार्यकाल नीतियों का क्या दिशा होगा वो तय करती है, कुछ घोषणाएं भी होती है। आज भी हुआ, आपने ठीक कहा कि उनका जो विजन विकसित भारत 2047 के लिए, तो भारत को स्वाधीन हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे तो तब डेवलप्ड इंडिया विकसित भारत होने के लिए क्या क्या जरूरी है, उस पर काफी विस्तार से उन्होंने बात किया, जैसे आर्थिक सुधारों की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो मजबूरी पे नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि हम नेशन फर्स्ट में बिलीव करते हैं और देश को पहले रख के आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार करेंगे। और उन्होंने कहा कि जैसे भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए, अग्रसर होने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। उन्होंने स्टेट्स को एक आह्वान दिया, उन्होंने कहा कि विदेशों से निवेश जो होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, केंद्र की नीति कितनी भी अच्छी हो लेकिन होंगे तो वो स्टेट्स में, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स हैं उनको अपने में एक हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हमारे यहां आए और निवेश लगाएं, रोजगार बढ़ाएं। उन्होंने डिजाइन फोकस किया कि इंडिया जो है एक डिजाइन हब होना चाहिए, डिजाइन फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने इसमें भी बहुत जोर दी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन सके। उन्होंने सेमीकंडक्टर की बात की, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, मतलब आप एक तरह से देखिए कि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट या एक लेआउट रख दी कि क्या क्या एरियाज हैं जो सरकार चाहती है कि वो अच्छे हों। ईज ऑफ लिविंग की बात की, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें 1,00,000 करोड़ रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए रखा गया है, ये प्रावधान हुआ है, और वो इसलिए कि जो हमारे युवा शक्ति में जो आइडियाज हैं वो आइडियाज वास्तविकता में बदल सके, रियलिटी में उसे ट्रांसलेट कर सके, इसीलिए ये पैसा रखा गया है ताकि ये बजट उनके लिए जो स्टार्टअप है, इनोवेशन रिसर्च, इन काम में आए। फिर उन्होंने काफी बार इंडस्ट्री 4.0 की जिक्र किया कि भारत को क्या करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री में अग्रसर हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी, तो कुल मिलाकर ये एक विजन रखा। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ मीडियम टर्म गोल्स हैं।
तो संदीप जी, इसे हम रोड मैप भी कह सकते हैं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, जैसा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम भी है विकसित भारत एट 2047। तो इसमें जो बातें उन्होंने कही, आपने भी जिक्र किया था सेमीकंडक्टर उत्पादन का, आज कई सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज लेने की बात हो रही है और कई सारे देश हैं जो भारत में निवेश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए, और भारत भी बनना चाहता है एक बड़ा हब कि यहां पर रोजगार का सृजन होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसको चाहते हैं कि जो हमारे भारत के उपकरण है उनमें ही माइक्रोचिप जो लगे भारत की बनी हो।
इस दिशा में पहली बात तो यह है कि अगर निवेश हो तो फिर उससे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगा, जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा। जैसे गिने चुने देश है जहां पे चिप बनाने की कैपेबिलिटी हो, इंडिया उसमें अगर एक अग्रसर रोल प्ले कर सके तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पब्लिक फोरम से अगर प्रधानमंत्री जी उस पर जोर दे तो तभी आप देख सकते हैं कि कुछ मूवमेंट्स होंगे, आगे जाके उसके असर भी दिखाई देंगे। अभी जैसे मेरे होम स्टेट आसाम, वहां पे एक सेमीकंडक्टर का टाटा ग्रुप के साथ स्टेट गवर्नमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उसमें रोजगार का अवसर होगा, कई सारे पोटेंशियल है। उस दिशा में आप ऐसे कदम उठाएं जो कि आप पोटेंशियल है उसे आप अनलॉक कर सके, आप उसे आगे बढ़ सके।
संदीप जी, अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आपने कही थी जो देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम अपने विशाल संसाधनों और कुशल कार्यबल का लाभ उठा सकते हैं, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसमें आपने जिक्र भी किया था कि राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। साथ में कई सारे ऐसे मिशन भी दिए हैं जिनसे इन सारी चीजों को जोड़ा जा सकता है और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है।
मैंने अभी आपको कहा कि उन्होंने कई सारी चीजें कई बार मेंशन करा, जैसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी, उन्होंने कहा कि डिजाइन फॉर इंडिया, डिजाइन फ्रॉम इंडिया होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है और जो बहुत ही एडवांस फील्ड है, कम देशों में उपलब्धि है। अगर भारत उस क्लब से जुड़ जाए, मतलब आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक उसी तरह उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हैं ही, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, तो जो फोकस है बेसिकली वो कि आप क्या कदम उठाएं अपनी नीतियों द्वारा ताकि आप आगे जाके एक विकसित भारत 2047 साल है, इस अंतराल में आपको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि आपका सपना है विकसित भारत का 2047 तक वो पूरा हो। और उन कदमों को विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि सुनने में आपको बहुत बड़ी घोषणा नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मुझे लगा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही कि भारत के जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि कोई कंप्लेन ना आए। कहा जाए तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है तो आप बोलते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि जर्मनी और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में जर्मन टेक्नोलॉजी या जापानीज टेक्नोलॉजी, इन देशों का जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, गाड़ियों में जर्मन टेक्नोलॉजी या जापानीज टेक्नोलॉजी कोई मात नहीं है, वैसे ही इंडियन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बन सकते? जब आप गाड़ी बना ही रहे हो, हाँ ऑटोमोबाइल बना ही रहे हो, तो आपकी स्टैंडर्ड इतनी ऊंची क्यों ना हो ताकि लोग बोले कि इंडियन टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये चीज कहा कि इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक हिसाब से प्रोत्साहन देने की बात है मैन्युफैक्चरिंग की, कि आप अपना स्तर, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप इतना बेहतरीन बनो कि आप उसके मानक तय करो।
आपने गाड़ियों की बात की तो इसी से रिलेटेड है, ग्रीन जॉब्स और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी प्रधानमंत्री जी ने कही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के जो भारत के प्रयास हैं, वैश्विक स्तर पर हमारे प्रयास बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं, काफी प्रयास हमारे यहाँ से किए जा रहे हैं, तो उन्होंने देश का ध्यान अब ग्रीन ग्रोथ यानी कि स्वच्छ आर्थिक वृद्धि की ओर भी ले जाने का आह्वान किया है। इसे हम एक विजन मान सकते हैं कि देश को हरित जॉब और हरित हाइड्रोजन के साथ में देश की आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार भी मिलेगा।
उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने ये भी बात करा कि भारत एकमात्र देश है जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पेरिस अकॉर्ड के जो टारगेट्स है वो भारत एक अकेले G20 समूह के देशों में एक अकेले देश है जिन्होंने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है अपना टारगेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो आपने कहा कि ग्रीन जॉब्स और ग्रीन एनर्जी। और अगर आप हाल फिलहाल की नीतियां भी देखें तो अभी एक भारत सरकार की नीति है कि अगर आप अपने घर में अगर आप सोलर एनर्जी के यूनिट्स लगाते हैं और ट्रेडिशनल, तो आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको अच्छे सब्सिडी मिलते हैं। तो वो एक डेफिनेटिव पॉलिसी डायरेक्शन है कि अगर आप अपने घर में ऐसी जगह हो जो सौर्य ऊर्जा की इस्तेमाल कर सकते हो तो आप सौर्य ऊर्जा की इस्तेमाल करो और आपको सरकार प्रोत्साहन देगी सब्सिडी के मार्फत से। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ भाषणों में ही नहीं, नीतियों में भी बदलाव लानी पड़ेगी और उस हिसाब से वो बदलाव हो रहे हैं, वो नीतियां बन रही हैं जिससे कि आपको प्रोत्साहन मिले क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। जो ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा की जो आप बोल रहे हो, सच्चाई में बदला जाए।
प्रधानमंत्री ने 2023 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है जो भारत का, उसको दोहराया है कि हम ये पूरा जरूर कर लेंगे।
तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब मैंने विदेशों में ये बात की तो लोग मेरे तरफ देखते थे आश्चर्यचकित होके कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी आशा जताई कि ये लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसी दिशा में पॉलिसी इंटरवेंशन से जो नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित हो, अपनी बिजली के बिल में कटौती हो और सब्सिडी के मार्फत उनको सस्ता हो और ग्रीन एनर्जी अपने घर के लिए खुद ही बनाए, अगर छत है आपके पास और आप लगा सकते हो और आपको सरकारी प्रोत्साहन मिल ही रहा है कि आप सब्सिडाइज रेट्स में देंगे, तो बहुत सारे लोग उस दिशा में जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने विचार रखे। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपनी स्पीच में ज्यादातर क्षेत्रों को कवर कर लिया जो देश के विकास से संबंधित है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में 75,000 नई चिकित्सा सीटें जोड़ने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाना। ये हमारे लिए आवश्यक भी है और आज के समय को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है।
बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से उन्होंने जो सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को उन्होंने टच किया, सिर्फ शिक्षा के मामले में ही नहीं, अगर हाल फिलहाल में मेडिकल नीट को परीक्षा को लेकर काफी चर्चा में रही, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत के हर साल लगभग 25,000 बच्चे बाहर जाते हैं, 75,000 सीट अगले 5 सालों में बढ़ाने की उन्होंने ऐलान करी। दूसरी, उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में भी चिंता जताया और राज्यों से कहा कि इस दिशा पे आप थोड़ा गंभीर होकर काम कीजिए। हाल फिलहाल में जो कंटेम्पररी घटनाएं हुई हैं उस पे उनका भाषण ने उसको टच किया है, उन्होंने कवर किया।
प्रधानमंत्री ने राजनीति में नए लोगों को शामिल करने की बात कही है, भाई भतीजावाद और जातिवाद की बुराइयों से लड़ने की बात कही है और भारत की राजनीति में हर अलग अलग क्षेत्र से लोग आए, इसका आह्वान उन्होंने किया। और साथ ही उन्होंने दुनिया भर में जो अभी घटनाएं घट रही हैं, खासतौर पे हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो आपके विचार में क्या है?
कुछ हिस्से ऐसे थे जो उनके विजन दर्शाते थे, कुछ हिस्से ऐसे थे जो काम किया उसका लेखा जोखा उन्होंने दिया, कुछ हिस्से जो थोड़े उनके जो वैचारिक मत हैं वो भी उन्होंने रखा। जैसे हमेशा से उन्होंने कहा है कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हमेशा कैंपेन किया है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में, और आज भी उसको दोहराते हुए उन्होंने एक ऐलान ऐसे भी किया कि उनकी आशा है चाहे किसी भी दल में जाए लेकिन 1,00,000 युवा ऐसे हों जिनका परिवार राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने खुद ही कहा कि ना उनका मामा फूफा फूफी माता पिता कोई भी पॉलिटिक्स में ना हो, ऐसे लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हों लेकिन वो हर स्तर पे, चाहे एमएलए के चुनाव लड़े, पंचायत का चुनाव लड़े, हर स्तर पे वो आए और अपना योगदान दे। और क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे एक फ्रेश थिंकिंग पॉलिटिक्स में आएगी और जिससे कि अगर आप फ्रेश सोच के साथ आते हो तो नीति बनाने में भी मदद मिलती है।
पड़ोसी देशों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं,
प्रधानमंत्री जी ने जब कांग्रेचुलेट किया था मोहम्मद यूनुस साहब को, जो इंटरिम सरकार का जो मुखिया है, उनको उन्होंने उसी संदेश में कहा था कि हमें उम्मीद है आपसे कि माइनॉरिटीज हैं जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनको आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनके जो धर्म के स्थल है उनको आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इस बात पे पॉलिटिकल कंसेंसस है भारत में। हरेक जो पार्टी है उन्होंने ये चिंता जताई है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हुए हैं वो नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में।
एक प्रश्न ये भी है कि सेक्युलर सिविल कोर्ट की प्रधानमंत्री जी ने बात की है, उन्होंने ये कहा कि जो पुराना सिविल कोर्ट अभी तक चला आ रहा था उसको हटा करके इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके क्या आसार आपको नजर आते हैं?
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उन्होंने कहा ये मुद्दा कई बार कोर्टों में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा था कि तवज्जो दे, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा, बड़े ही इंटरेस्टिंग नजरिया से फ्रेम किया। उन्होंने कहा कि सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, मतलब अलग अलग धर्मों का जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग अलग धर्मों का अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं होना चाहिए, सारे समुदायों के लिए, सारे धर्म और सारे पंथों के लिए एक ही जैसा पर्सनल लॉ होना चाहिए, और तभी सही मायने में मतलब सेक्युलर सिविल कोड। उन्होंने यूनिफॉर्म शब्द को यूज नहीं किया, उन्होंने कहा सेक्युलर सिविल कोड। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उनके भाषण के कुछ विजन थे, कुछ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थे और कुछ आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स थे। मेरे हिसाब से जो आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स उन्होंने दो चीजों पे रखी, एक वो सेक्युलर सिविल कोड पे रखा, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे भी उन्होंने अपील करा कि इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति उनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उन्होंने कहा कि वो कमेटी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, और उन्होंने अपील करी कि सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होके इस पे गहरा सोच करके कुछ निर्णय ले। तो मैं ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें मैं उस हिस्से में रखूंगा जो वैचारिक जो मत है उसको दोबारा से उन्होंने दोहराया। तीसरे कार्यकाल में भी हमने इसको छोड़ा नहीं।
संदीप जी, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आपके साथ में, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद निखिल जी।
अभी आप सुन रहे थे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।